स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 21 मई और दिन शनिवार। व्हाइट हाउस के बाहर एक हथियारबंद शख्स को देखते ही सुरक्षा कर्मी ने मारी गोली।
We were about to go inside the door, and all we heard is one shot fired. Boom.
हरियाणा सरकार ने जाट आंदोलन मामले में करीब एक दर्जन अधिकारियों को किया सस्पेंड। उत्तर भारत में कई जगह तापमान 50 के पार, कहीं चक्रवात की चेतावनी।
मई का दूसरा उत्तरार्ध और जून का पहला उत्तरार्ध उत्तर भारत के लिए गर्मी का मौसम है। क्लाइमेटोलॉजिकली तो अभी गर्मी पड़नी ही है, पड़नी ही चाहिए।
मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट को लेकर केंद्र सरकार ने दी अध्यादेश को मंजूरी। लेकिन उन सबसे पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार निखिल रंजन से। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस के बाहर कल एक हथियारबंद शख्स सुरक्षा सेवा के एजेंट की चलाई गोली से जख्मी हो गया। ये घटना व्हाइट हाउस से सटे एक चेक पोस्ट पर हुई। संदिग्ध व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के वक्त राष्ट्रपति बराक ओबामा व्हाइट हाउस में नहीं थे, लेकिन उपराष्ट्रपति जो बाइडेन वहीं थे। गोली चलने के तुरंत बाद व्हाइट हाउस को सील कर दिया गया और उपराष्ट्रपति को अंदर के सुरक्षित हिस्से में ले जाया गया। कुछ देर बाद दरवाजे फिर से खोल दिए गए। अमरीकी स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि देश में 157 गर्भवती महिलाओं में जीका वायरस का पता चला है। अमरीकी एजेंसी का कहना है कि इनमें से दर्जन भर से कुछ कम ऐसे मामले हैं जिन्हें काफ़ी मुश्किल झेलनी पड़ी है, जैसे कि गर्भपात या फिर अजन्मे बच्चे में कोई कमी। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जीका वायरस की रोकथाम के लिए कांग्रेस से $1.9 अरब के आपात फंड की मांग की थी। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने जीका से निपटने के उपाय नहीं किए तो आने वाले दिनों में और समस्या होगी। ओबामा ने कहा,
If I'm a young family right now, or somebody who's thinking about starting a family, this is just a piece of insurance that
अगर इस वक्त मैं एक युवा परिवार हूं या फिर कोई ऐसा जो परिवार शुरू करने के बारे में सोच रहा है, तो ये एक महज इंश्योरेंस है जो मैं खरीदना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि ये ज़्यादातर अमरीकियों के लिए सच है। तो इसलिए और ये समझते हुए कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे रोकने के लिए हम दीवार बना दें, आखिर मच्छरों को कहीं आने जाने के लिए कस्टम से नहीं गुजरना होता। हम इस स्तर तक जाकर इसका सामना नहीं कर रहे और आखिरकार हमें बड़ी समस्या झेलनी पड़ेगी। राष्ट्रपति बराक ओबामा के शब्द। अमरीकी राष्ट्रपति ने वायरस से निपटने के लिए $1.9 अरब के आपातकालीन कोष को मंजूरी न मिलने पर संसद की आलोचना की है। मंगलवार को लापता हुए इजिप्ट एयर के विमान की तलाश कर रहे दलों को भूमध्य सागर में विमान का मलबा और मानव अंग तैरते हुए मिले हैं। खोजी दल को विमान की सीटें और यात्रियों के सामान भी मिले हैं। ऐसे संकेत भी मिले हैं कि विमान में धुएं की जानकारी देने वाला अलार्म हादसे से ठीक पहले बंद हो गया। विमान में 66 लोग सवार थे और अब किसी के जीवित बचने की संभावना लगभग खत्म हो गई है। काहिरा में पीड़ित परिवारों ने मस्जिदों में विशेष प्रार्थनाएं की हैं। पेरिस से काहिरा जा रहे विमान में सवार ज्यादातर यात्री मिस्र के थे। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इराकी सुरक्षा बलों ने राजधानी बगदाद के अति सुरक्षित समझे जाने वाले ग्रीन जोन को दोबारा अपने नियंत्रण में ले लिया है। शिया मौलवी मुक्तदाल सदर के समर्थक बीते हफ्ते यहां जबरदस्ती घुस आए थे। सुरक्षा बलों ने इन लोगों को वापस भेजने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया और थोड़ी बहुत गोलीबारी की। पूरा उत्तर भारत भयानक गर्मी की चपेट में है। राजस्थान के कई जिलों में पारा 50 डिग्री को पार कर चुका है, जबकि दिल्ली और आसपास के इलाकों में भयानक गर्मी पड़ रही है। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है मई की 21 तारीख और दिन शनिवार। तो जैसा कि अभी आपने निखिल रंजन से समाचार में सुना कि उत्तर भारत में भयानक गर्मी पड़ रही है, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अमरीका से। अमेरिका में राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस के बाहर एक हथियारबंद शख्स को देखते ही वहां तैनात यूएस सीक्रेट सर्विस के अधिकारी ने उन पर गोली चला दी। उन्हें जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरी जानकारी के साथ निखिल रंजन।
बीती रात जब भारत में लोग गहरी नींद में सो चुके थे, तभी अमरीकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस के बाहर से गोलीबारी की खबर आई। यूएस पार्क पुलिस के मुताबिक खुफिया सेवा के एक एजेंट ने मुख्य भवन के पास चेक पोस्ट पर एक हथियारबंद शख्स को गोली मार दी। घटना के बाद कुछ देर के लिए व्हाइट हाउस को बंद कर दिया गया। उस वक्त अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा मैरीलैंड में गोल्फ खेल रहे थे। पुलिस की गोली से घायल शख्स को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि उसकी हालत गंभीर है। बाल्टीमोर के नागरिक अकील पैटरसन एक पुरस्कार समारोह के लिए व्हाइट हाउस में जाने की कतार में खड़े थे। उन्होंने बीबीसी को बताया कि तब क्या हुआ। हम दरवाजे के अंदर घुसने वाले थे, तभी हमें गोली चलने की आवाज सुनाई दी। जाहिर है कि हम सब ने उस ओर देखा। शहरों में रहने वाले लोग तो इस तरह की आवाज़ जानते हैं, और तब करीब 30 सेकंड बाद अधिकारियों ने दरवाज़ा बंद कर दिया। उन्होंने इसे सील कर दिया और उसके बाद बगल के दरवाजे से बाहर आए। रेडियो पर मुझे सुनाई पड़ा, संदिग्ध गिरा, गोली चली, और इसके बाद फिर उन्होंने कहा, नीचे झुको, भागो, भागो। तब मैंने पूछा कि हम इस जगह क्यों शरण ले रहे हैं, लेकिन ठीक है। इसके कुछ देर बाद उन्होंने हमें सड़क पर वापस भेज दिया। व्हाइट हाउस में गोली चलने के वक्त वहां मौजूद अकील पीटरसन के शब्द। जब गोली चली तब उपराष्ट्रपति जो बाइडेन व्हाइट हाउस में ही थे। अधिकारियों के मुताबिक उन्हें व्हाइट हाउस के एक सुरक्षित हिस्से में ले जाया गया। बीते सालों में व्हाइट हाउस में सुरक्षा से जुड़ी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसके बाद यहां की व्यवस्था में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। अप्रैल में एक शख्स ने व्हाइट हाउस की बाड़ पर चढ़ने की कोशिश की थी। 2014 में इराकी जंग में शामिल ओमर गोंजालेस बाढ़ को कूद कर पार कर गए और हाथ में चाकू लेकर व्हाइट हाउस की तरफ दौड़े। 2013 में भी एक शख्स ने चाकू और गोलियों से भरी एक जीप को सुरक्षा गेट से टकरा दिया था। 2011 में ऑस्कर ऑर्टेगा पर ओबामा या उनके स्टाफ की हत्या के प्रयास करने का आरोप लगा। ऑस्कर को व्हाइट हाउस के सुरक्षा कर्मियों ने गोली मार दी थी।
ये थे निखिल रंजन,
बीबीसी इंडिया पोल।
5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद आखिर क्या मतलब है कांग्रेस मुक्त भारत के जुमले का? 2 और राज्य गंवाने के बाद क्या कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी की हैसियत खो चुकी है? क्या कांग्रेस के सिमटने के साथ ही भारत की मध्य मार्गीय राजनीति हाशिए पर चली गई है? इस शनिवार यानी 21 तारीख को बीबीसी इंडिया बोल में यही है बहस का मुद्दा। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब बात करते हैं उत्तर भारत की। उत्तर भारत में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। राजस्थान के कई जिलों में पारा 50 डिग्री को पार कर चुका है। वहीं बंगाल की खाड़ी, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में चक्रवात रोआनू को लेकर चेतावनी जारी की गई है। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने इसे लेकर भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक LS राठौर से बात की और सबसे पहले पूछा कि उत्तर भारत को गर्मी से कब तक राहत मिल सकती है।
मई का दूसरा उत्तरार्ध और जून का पहला उत्तरार्ध उत्तर भारत के लिए गर्मी का मौसम है। क्लाइमेटोलॉजिकली तो अभी गर्मी पड़नी ही है, पड़नी ही चाहिए। प्रश्न ये है कि जो इस वक्त गर्मी है, उबाल देने वाली जो सीवियर हीट वेव है, हाँ, इसमें जो पहला पीक है वो मैं समझता हूँ पूर्ण हो चुका है। तापमान में थोड़ा सुधार अवश्य होगा और 23 और 24 को एक पश्चिमी विक्षोभ भी है, उसके चलते कुछ बादल आएंगे। और साथ ही साथ जो अभी बंगाल की खाड़ी में चक्रवात रोआनू है, उसके प्रभाव से गांगेय क्षेत्र में पूर्वी हवाओं का विस्तार हो चुका है, तो उससे भी कुछ नमी के साथ में इस मैदानी भागों में ठंड होगी, लेकिन ये बहुत ट्रांजिएंट है। साथ ही साथ इतनी ठंडी नहीं होगी, बिल्कुल राहत मिल जाए। और उसके बाद में मई समाप्त होते होते शायद ये एक दोबारा एक दूसरा पीक आ सकता है।
एक तरफ उत्तर भारत गर्मी से तप रहा है, दूसरी तरफ चक्रवात रोहानू को लेकर आशंका बनी हुई है, इसके बारे में क्या कुछ अपडेट है?
देखिए, चक्रवात रोहानू इस वक्त गोपालपुर से करीब 50 किलोमीटर और पिछले 12 घंटे में इसके गति अगर देखें, गति जो है चक्रवात के आगे बढ़ने की, तो ये काफी तेज रही है। औसतन करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटा से ये उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है। पहले हमारा आकलन था कि 21 की रात को, देर रात तक ये चटगांव के आसपास खेपूपाड़ा और कोक्स बाजार के बीच में जाकर के कहीं तट को पार करेगा, लेकिन अब लगता है शायद थोड़ा उससे पहले ये उस तट को पार कर जाए।
आपने इसको लेकर कोई अलर्ट जारी किया है, किस तरह की सावधानी लोग रखे हैं इस दौरान?
जब से ये तमिलनाडु के तट पे था और चक्रवात बना, तभी से लगातार पहले हमने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मछुआरों और नाविकों को सलाह दी, क्योंकि समुद्र रफ था और हवाएं की समुद्री क्षेत्र में गति तेज थी, तो वहां के लिए अलर्ट था। अब चूंकि ये ऊपर उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ चुका है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के नाविकों को उन तटों को डीवार्न कर दिया गया है, लेकिन उड़ीसा और बंगाल और बांग्लादेश और ये जो पूरा क्षेत्र है अभी भी वार्निंग में है, क्योंकि अभी वहां पर जो समुद्र में हवाएं हैं वो काफी तेज रहेंगी और समुद्र की जो स्टेट है वो भी रफ से वेरी रफ है।
इसका असर कब तक रहेगा और कौन कौन से क्षेत्र इसके प्रभाव क्षेत्र में रहेंगे?
चक्रवात का असर तो अब 24 या ज्यादा से ज्यादा 30 घंटे ही रहेगा और उसके प्रभाव से अभी जो बंगाल के तटीय क्षेत्र है, उड़ीसा के तटीय क्षेत्र है या बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र है, अगले 24 घंटों में तो यहाँ पर भारी से अधिक भारी बारिश होगी। अंदरूनी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बारिश की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि नमी काफी के प्रभाव से प्रायद्वीपीय क्षेत्र में और पूर्वी राज्यों में भी जा चुकी है, तो उसके चलते थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कुछ बढ़ जाएगी। तट पार करने के पश्चात उत्तर पूर्वी राज्य, खासतौर से नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये पहाड़ी क्षेत्र भी है और क्योंकि वहीं पर जाकर के और अपना विस्तार फैलाएगा, काफी नमी उस क्षेत्र पर ले जाके छोड़ेगा, तो यहाँ काफी बारिश होगी और साथ ही साथ आसाम, अरुणाचल प्रदेश तक भी इसका प्रभाव रहने की आशंका है।
ये थे भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक LS राठौर और उनसे बात कर रहे थे हमारे सहयोगी वात्सल राय। और अब चलते हैं 24 दक्षिण परगना जिले जहां के कागा द्वीप पर के पास मौजूद हैं हमारे सहयोगी सलमान रावी। सलमान, बताएं कि चक्रवात को लेकर जो चेतावनी जारी तो कर दी गई है, लेकिन और किस तरह के इंतजाम किए गए वहाँ?
देखिए कुछ खास नहीं, चूंकि ये जो इलाका है ये तो वैसे ही मछुआरों का इलाका है और बिल्कुल माउथ ऑफ गंगा जिसे कहते हैं कि जहाँ पर गंगा जाकर समंदर में मिलती है वो इलाका है और काफी तेज बारिश रात भर होती रही और तेज हवाएं चल रही हैं अभी भी। हालांकि अभी तक वो तूफान जो है वो यहाँ पहुंचा नहीं है रोहानु, लेकिन लोगों ने ये तो एप्रिहेंशन कर ही रखा था। इसकी वजह से जितने भी मछुआरों की जो कश्तियां हैं मैं देख रहा हूँ मेरे सामने यहाँ पर वो किनारे पर लगी हुई है ये सारी कश्तियां, और इनसे कहा गया है कि अगले 48 घंटे तक ये समंदर में ना जाए, नदी में ना जाए, क्योंकि वो जो असर है अभी तेज हवाएं शुरू हो चुकी हैं और तूफान अगले 24 घंटों में इस इलाके में जोरदार तरीके से अपना प्रभाव दिखाने वाला है।
जी बहुत शुक्रिया सलमान आपका, आप अपना ख्याल रखिए। बहरहाल अब बात करते हैं मेडिकल परीक्षा की। केंद्र सरकार ने कल एक अध्यादेश को मंजूरी दी जिसके जरिए राज्य बोर्ड एक साल तक मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेशनल एजुकेशन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नीट के दायरे से बाहर रह सकेंगे। इसके बाद राज्य बोर्ड के छात्रों को 24 जुलाई को होने वाली नीट 2 यानी दूसरी नीट परीक्षा में शामिल होने की जरूरत नहीं होगी। सुनिए वात्सल राय की यह रिपोर्ट।
केंद्र सरकार ने देश भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा यानी नीट को अनिवार्य बनाने से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक अध्यादेश को मंजूरी दी जिसके जरिए राज्य बोर्डों को एक साल के लिए नीट के दायरे से बाहर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में देश के सभी सरकारी डीम्ड और निजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा को अनिवार्य कर दिया था। कई राज्य इसका विरोध कर रहे थे। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक ये राहत सिर्फ एक वर्ष के लिए है और अगले साल से छात्रों को नीट के जरिए ही दाखिला मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार नीट को लेकर प्रतिबद्ध है।
केंद्र सरकार उस पर कटिबद्ध है और उसको आगे बढ़ाना चाहती है। उसी तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है। जजमेंट के पश्चात कुछ स्टेट मिनिस्टर्स और कुछ स्टेट के कंसर्न्स आए हैं रिलेटेड टू लैंग्वेज एंड सिलेबस। हम उसकी कंसल्टेशन प्रोसेस कर रहे हैं। कंसल्टेशन प्रोसेस होने के पश्चात हम निर्णय पर आएंगे।
उधर इसके पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नीट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए अध्यादेश न लाने का अनुरोध किया था। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अध्यादेश का स्वागत किया है।
हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के ध्यान में लाया था कि अगर ये निर्णय नहीं होगा तो महाराष्ट्र जैसे राज्य में खासकर ग्रामीण भागों से आने वाले जो विद्यार्थी हैं ये बिल्कुल डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। साथ ही में जो रीजनल लैंग्वेज में बच्चे पेपर लिखते हैं उनके लिए कोर्स वेयर ही अवेलेबल नहीं है तो वो पढ़ाई भी नहीं कर सकते।
नीट के पहले दौर की परीक्षा 1 मई को हो चुकी है। इसमें करीब 6.5 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। अध्यादेश के बाद राज्य बोर्डों के छात्रों को 24 जुलाई को होने वाली दूसरे दौर की परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी।
ये थे वात्सल राय। तो नीट पर केंद्र सरकार ने दी अध्यादेश को मंजूरी। और अब बात हरियाणा की। हरियाणा सरकार ने जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की जांच करने वाले प्रकाश सिंह पैनल की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस पैनल ने आंदोलन के दौरान अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाने वाले अधिकारियों की लिस्ट तैयार की है। सरकार ने कल करीब एक दर्जन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। इसे लेकर हमारे सहयोगी वात्सल राय ने चंडीगढ़ में स्थानीय पत्रकार संजय शर्मा से बात की और सबसे पहले सरकार की कार्रवाई के बारे में पूछा।
जी, इस पे कार्रवाई शुरू हो गई है। और अगर हम ये कहें कि ऑफिशियली पहली बार सरकार ने इस बात को कहा है कि प्रकाश सिंह कमेटी के आधार पर हमने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, तो 10 PSP और 3 हरियाणा सिविल सर्विस ऑफिसर्स हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। ये सारे अधिकारी उन क्षेत्रों में थे हिंसा, खासतौर से रोहतक और भिवानी और सोनीपत, इन तीन डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर्स उस टाइम पोस्टेड थे और इनकी जिम्मेदारी सीधी सीधी मिली है। करीब करीब 90 अधिकारियों की जिम्मेदारी ठहराई थी प्रकाश सिंह कमेटी ने। 200 से 250 अधिकारियों को जांच के घेरे में लिया था। अब मुझे ऐसा लगता है कि इनका सबसे ज्यादा सीरियस मामला था तो इनको पहले कर दिया। फिर जिसकी जिस तरह से किसी की ACR में रिपोर्ट है, किसी में क्रिमिनल केस हो सकते हैं, इस तरह की प्रक्रिया आगे जारी रहने की संभावना है। कुछ इससे पहले भी हुआ कि अभी 2 दिन पहले होम सेक्रेटरी को हटा दिया गया उनकी जगह। इनका भी ऐसा संकेत है कि प्रकाश सिंह कमेटी में उनको भी कहीं ना कहीं इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया था कि वो ठीक ढंग से हैंडल नहीं कर पाए। इसी तरह उससे पहले DGP को हटा दिया गया था। हालांकि उनके मामले में साफ साफ कहा नहीं गया था कि प्रकाश सिंह कमेटी के आधार पर वो कर रहे हैं, लेकिन लगता ऐसा है कि वो सब उसी प्रक्रिया का एक चलता हुआ रूप है।
तो क्या सरकार प्रकाश सिंह कमेटी की सिफारिशों को चरणबद्ध तरीके से लागू कर रही है?
मैं बता दूं कि प्रकाश सिंह बहुत ही सम्मानीय पुलिस अधिकारी हैं, वही अधिकारी हैं जिनकी वजह से पूरे देश में पुलिस सुधार शुरू हुआ। उनकी पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में थी उसके आधार पे, तो उनकी काफी इज्जत है उनके प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में। तो उनने जो सब कुछ काम किया है बहुत पुख्ता किया है। तो जिस केस में जिस तरह का नेचर नजर आ रहा हो उसी हिसाब से मुझे उम्मीद है कि सरकार फैसले लेगी। सस्पेंशन कोई ज्यादा थोड़ी सख्त सजा है, किसी अधिकारी की उससे कम हो सकती है, किसी के ACR में कुछ मेंशन हो सकता है। तो ये लगता है प्रक्रिया पूरी चलेगी।
अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के अलावा भी क्या प्रकाश सिंह कमेटी ने कोई सुझाव दिया है सरकार को?
अभी मुश्किल ये है कि प्रकाश सिंह कमेटी जो है वो पब्लिक नहीं की गई है, बस सरकार उसको कोट करके कह रही है कि उनने इस तरह का, तो उस पर सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। ये निश्चित हम समझ सकते हैं कि उनने कोई सुझाव दिए होंगे, लेकिन एक अजीब बात ये हुई थी कि प्रकाश सिंह कमेटी के बाद भी हाई कोर्ट ने सरकार से इस बात के लिए खिंचाई की थी कि प्रकाश सिंह कमेटी जो आपने बनाई इसके लोकस टेंडाई क्या थी, आपने इसको कमीशन की शेप क्यों नहीं दी थी? क्योंकि कमीशन पे कुछ खास अधिकार होते हैं, वो किसी को समन कर सकते हैं, वो अरेस्ट वारंट निकाल सकते हैं। कमेटी के पास ऐसे कोई अधिकार नहीं होते। अगर कोई ऐसे ऑफिसर्स होते, ऐसी स्थितियां होती हैं जहां कमेटी जांच नहीं कर पाती तो पूरी तरह रुक जाती। लगता है कि जो कमेटी ने काम करके दिया है वो उसमें सुझाव निश्चित तौर पर होने की उम्मीद है।
ये थे चंडीगढ़ से स्थानीय पत्रकार संजय शर्मा। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU की प्रोफेसर अर्चना प्रसाद समेत दूसरे सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के अध्ययन दल का छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित बस्तर का दौरा विवादों में घिर गया है। पुलिस का दावा है कि जिन गांवों में इस अध्ययन दल ने दौरा किया था वहां के गांव वालों ने कथित रूप से थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि इस अध्ययन दल के लोगों ने उन पर माओवादियों का साथ देने के लिए दबाव बनाया था। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच चल रही है। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
JNU की प्रोफेसर अर्चना प्रसाद, दिल्ली विश्वविद्यालय की डॉक्टर नंदिनी सुंदर, छत्तीसगढ़ में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता संजय पराते और जोशी शोध संस्थान के विनीत तिवारी ने 12 से 16 मई तक बस्तर संभाग के कई गांवों का दौरा किया था। नंदिनी सुंदर पिछले 20 सालों से बस्तर में सामाजिक और मानव विज्ञान का अध्ययन कर रही हैं और मार्क्सवादी नेता संजय पराते की राजनीति का एक बड़ा केंद्र बस्तर रहा है, लेकिन उनके ताज़ा दौरे पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस अध्ययन दल के बस्तर से लौटते ही पुलिस ने कथित रूप से दरभा थाने के 2 गांवों के लोगों की एक शिकायत सोशल मीडिया में जारी की, जिसमें इस अध्ययन दल पर गांव वालों को पुलिस के खिलाफ भड़काने का आरोप लगाया गया है। बस्तर के इस घने जंगलों वाले गांव के अधिकांश आदिवासियों द्वारा अंग्रेजी में हस्ताक्षर के साथ जारी की गई इस कथित शिकायत में कहा गया है कि अध्ययन दल के लोगों ने उन्हें माओवादियों का साथ नहीं देने पर गांव जला देने की बात कही है। राज्य के गृह मंत्री रामसेवक पैंकड़ा का कहना है कि मामला गंभीर है और पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।
अगर उनकी विचारधारा राष्ट्र विरोधी तत्व की तरह की है तो निश्चित है कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और हम पुलिस को भी निर्देश करेंगे कि ऐसे प्रकरण जब आते हैं तो उस पर रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई करें।
लेकिन जेएनयू के प्रोफेसर अर्चना प्रसाद का कहना है कि यह फर्जी शिकायत पुलिस ने ही लिखी है और वो चाहती है कि बस्तर में सुरक्षा बल के जवान आदिवासियों पर जो अत्याचार कर रहे हैं उसकी खबर बस्तर से बाहर न जाए। अर्चना प्रसाद का दावा है कि वो शुरू से माओवादियों के खिलाफ लिखती रही हैं, भला वो माओवादियों का क्यों समर्थन करेंगी।
ये तो बहुत हास्यास्पद बात है। आप मेरा सोशल साइंटिस्ट के आर्टिकल्स पढ़िए, मेरे पीपल्स डेमोक्रेसी के आर्टिकल्स पढ़िए, वो तो माओवाद के एकदम खिलाफ है। मेरा तो स्टैंड ही रहा है कि माओवाद भी एक तरीके का डिक्टेटरशिप लागू कर रहा है और छत्तीसगढ़ स्टेट को मिसबिहेव कर ही रही है। छत्तीसगढ़ स्टेट एक संवैधानिक अथॉरिटी है, कोई मिडिवल वॉर कैंप तो है नहीं ना ये।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का भी कहना है कि बस्तर में पुलिस राज चल रहा है और पुलिस फर्जी तरीके से लोगों को निशाना बना रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी कहते हैं,
बस्तर में जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन द्वारा पत्रकारों को, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को, विपक्षी दल के नेताओं को, अधिवक्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, वहां पर सरकार का और पुलिस का जो लोकतंत्र विरोधी रवैया है उसे देखते हुए इस मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है।
पुलिस अधिकारी मामले की जाँच का हवाला देकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन जांच से पहले ही इस कथित शिकायत पर जिस तरह से बहस शुरू हो गई है उसमें यह देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
और अब वक्त तो चला अखबारों की समीक्षा का। जी निखिल, बताएं अखबार क्या कहते हैं।
जी, अखबारों में आज भी जो है चुनाव के नतीजों के विश्लेषण और उसके फॉलोअप की खबरें बहुत सारी दिख रही हैं। कांग्रेस में जिस तरह से उठापटक मची हुई है दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर के, उससे जुड़ी हुई खबरें हैं। मेरे सामने जनसत्ता है। सबसे पहले मैं इसकी बात कर लूं कि इसमें लीड खबर बनाई है जनसत्ता ने कि कांग्रेस को सुधारें सोनिया राहुल, इस संदेश के जरिए जो कार्यकर्ताओं की मांग है इस हेडलाइन के जरिए ये जताने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ लखवी पर पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधी अदालत ने जो फैसला सुनाया है उसका जिक्र बड़ी प्रमुखता से हिंदी अखबारों में, ख़ासतौर से मैं देख रहा हूँ कि ये हिंदुस्तान में भी है। और इसके तहत ये कहा गया है पाकिस्तान की अदालत की ओर से कि वहाँ 2008 के मुंबई हमले के आरोप में लश्करे तैयबा के ऑपरेशन कमांडर जकीउर रहमान लखवी और 6 अन्य लोगों पर मुकदमा चलेगा और उन पर 166 लोगों के अलग अलग हत्या के लिए उकसाने के आरोप में ये सुनवाई की जाएगी। तो इस खबर को भी काफ़ी प्रमुखता से जगह दी है। जनसत्ता ने एक और खबर लगाई है कि दलितों के साथ मंदिर गए सांसद तरुण विजय पर भीड़ का हमला। ये घटना देहरादून के पास की है। वहाँ भाजपा जो सांसद हैं तरुण विजय, वो उत्तराखंड से ही राज्यसभा के सांसद हैं और वो एक मंदिर में कई दलितों के साथ प्रवेश कर जा रहे थे और उस दौरान पर काफ़ी हमला किया गया, पथराव किया गया और उसमें वो जख्मी हो गए। इसके अलावा एक खबर इंडियन एक्सप्रेस में है जिसमें ये इनकी खास रिपोर्ट है जो एक ISIS के वीडियो से जुड़ी हुई है जिसमें ये जिक्र किया गया है कि वो हिंदुस्तानी जिहादियों को भर्ती कर रहा है और उसके जरिए बाबरी मस्जिद के विध्वंस और इन सब घटनाओं की बदला लेने की तैयारी
है। बहुत शुक्रिया निखिल आपका अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब एक खबर रांची से। रांची में जगन्नाथपुर के निकट कुष्ठ परिवारों की एक बस्ती है। यहाँ रहने वाले 200 से अधिक परिवारों की जिंदगी भीख में मिले पैसे से चलती है। इस बस्ती के सामने एक तालाब है और भीषण गर्मी में ये तालाब जब सूखा तो विपदा से निकलने के लिए सभी परिवारों ने आपस में 200 रुपये जमा किए। ये लोग तालाब को गहरा और चौड़ा कराने का काम कर रहे हैं ताकि इस बारिश में ढेर सारा पानी जमा हो जाए। रांची से नीरज सिन्हा की एक खास रिपोर्ट।
ताला है बोल कर हम लोग बातों है, अभी ताला में पानी नहीं था, अभी बहुत दिक्कत है, पानी नहीं बाबा। मांगने जाते हैं, मांगने के लाते हैं तो बोला लड़का लोग नहीं हुआ दीजिए बाबा 200 रुपया सब दिया नकड़ा ना तरह आदमी वही हो रहा, कहाँ पाएगा पैसा, अब पैसा नहीं।
कुष्ठ पीड़ित इस महिला के सामने बेबसी है पर इससे बाहर निकलने की हिम्मत भी। इस बस्ती के किसी परिवार से आप मिलें या बात करें तो उनकी आंखों में एक ही फिक्र है, तालाब के जीर्णोद्धार का काम वक्त पर पूरा हो जाए। ये हैं प्यारी, पति की आंखों में रोशनी नहीं पर हर गम साथ मिलकर बांट लेती है। हमने 200 रुपये लगाने के बारे में पूछा तो उनका कहना था,
अभी के मांग के जून तब लगाते हैं, कहाँ से, हम लोग का तो नौकरी की चाकरी है। हम लोग तो सदा सुबह उठते ही डूबा पकड़ते हैं और दे बाबू करने लगे हैं। कितना आप लोग को हम लोग को ही थोड़ा सा खराब तो लगता है, लेकिन मजबूरी से मांगना पड़ा है।
बस्ती के मुखिया मुरारी गोस्वामी बताते हैं कि चैत के महीने में ही तालाब इस कदर सूखा कि पूरी धरती फट पड़ी। फिर हमारी कमेटी बैठी और देर किए बिना आपस में चंदा कर इसे गहरा कराने की सहमति बनी। सार्वजनिक तौर पर इस तालाब का इस्तेमाल होता है, ऐसे में उनके इस फैसले से दूसरे लोगों ने आपत्ति तो नहीं जताई। इस पर मुखिया कहते हैं,
ना आपत्ति नहीं है, इसी में सब बोलते हैं अच्छा काम आप लोग कर रहा, सहयोग इतना आप लोग कर रहा, एक लोग भिखारी है आप लोग, लेप्रोसी है, कुष्ठ बीमारी है, भिकी मांग के पैसा चंदा करके जब लोग चंदा किया है, बहुत अच्छा बात है। सब बोल रहा जगन्नाथ वाला लोग, इसी में जैसे हम लोग का जगन्नाथ मंदिर का पूजा पाठ होता है रथ मेला में, सब नहाता आके बाहर आदमी सब नहाता है इसी में, इसीलिए उसका खुदाई कर रहा है, गड्ढा कर रहा है, ज़्यादा पानी जमेगा, पानी का तो बहुत अभाव है। हम लोग का सब चापान सूख गया, हाईकोर्ट ने 5-4-5 को डीप बोरिंग किया, विधानसभा 4-5 को डीप बोरिंग हो गया, इधर स्टेडियम में हो गया, इसलिए हम लोग सब चापा मतलब सूख गया, कुआँ सूख गया। एक दिन छोड़ छोड़ के गाड़ी आता है नगर निगम से, उसमें थोड़ा बहुत पानी देता है, ऐसे चल रहा है काम हम लोग।
इसी बस्ती की सीमा का कहना था,
बहुत कोई करते बाहर का भी, मगर बाहर लोग से कैसे मांगने जाएगा, कौन आके नहा रहा है, जितना ट्रक वाले पार हो रहे हैं वो लोग भी नहा रहे, पानी देखने से मतलब कोई भी नहाता है सब कोई, तो किसको बोलेगा। बाहर का आदमी से तो हम लोग मदद नहीं मांग सकते हैं, अगर अपना इच्छा है तो वो देगा खुद, मगर हम लोग बस्ती वाला सब मिल के सोचे बैठ के कि कुछ करने से होगा।
गांव के रास्ते में मिले रमण भीख मांग कर पत्नी के साथ घर वापस लौट रहे थे। वे बताने लगे, सुबह ही निकले थे पर हाथ खाली रहा, हालांकि तालाब के काम में जरूरत पड़ी तो और पैसे देंगे।
नहान धोन देखिए, खाने पीने का बहुत तकलीफ हो रहा है, पानी नहीं है तो क्या करेगा, यदि नहीं देगा तो कैसे होगा। सब आदमी यदि सहायता नहीं करेगा तो मुखिया जी का घर में गाछ है पैसा का, अकेले क्या करेगा मुखिया जी, नहीं होगा और करेगा, नहीं यदि होगा तो फिर उठाना पड़ेगा।
हम मुखिया जी के साथ तालाब पर भी गए, पता चला इन परिवारों से जितना बना वे श्रमदान भी करते रहे।
तालाब का काम आधा से ज्यादा ही हो गया, 7 फुट गर्त हो गया, 7.5 फुट सब जगह 7.5 फुट गड्ढा हो गया, इसी में थोड़ा से पानी के चलते दुलखी चलते गाड़ी घुस जाता है, इसलिए छोड़ दिया, वो सूखेगा लगेगा गाड़ी।
तो बता रहे थे आपकी करीब 70,000 रुपये खर्च हो चुका है।
हो चुका है,
हो गया।
अब बाहर से कुछ चंदा मिला क्या?
ना बाहर से चंदा नहीं हुआ।
आप लोग मांगे भी नहीं?
नहीं।
तालाब के एक छोर पर मिले रमाकांत पांडे, कुष्ठ परिवार के लोग इस तालाब का इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ कोई भेदभाव तो नहीं किया जाता? इस सवाल पर वे कहते हैं,
कभी आपत्ति नहीं जताते, बहुत ही अच्छा बात है, वो लोग अपना श्रम करके और ऐसा काम कर रहे हैं, इससे खुशी है, आम जनता को इससे खुशी है, सफाई हो जा रहा है, बन जा रहा है।
तो भेदभाव का कभी कोई मामला यहां
कोई भेदभाव नहीं, हम तो बैठ के साथ खाते हैं, वो लोग एक साथ खाते हैं, कोई भेदभाव नहीं हम लोग का।
सरकारी गैर सरकारी स्तर पर किसी मदद का इंतजार किए बिना भिखारी परिवारों की ये कोशिशें जाहिर करती हैं कि हालात से जूझने के वे हौसले जरूर रखते हैं। नीरज सिन्हा, BBC रांची।
हालात से जूझने का हौसला ज़रूर रखते हैं, बता रहे थे नीरज सिन्हा जगन्नाथपुर से ये खास रिपोर्ट। बहरहाल जाते जाते आपको बता दें कि वक्त हो चला है प्रमुख समाचारों का।
BBC समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस के बाहर कल एक हथियारबंद शख्स सुरक्षा सेवा के एजेंट की चलाई गोली से जख्मी हो गया। यह घटना व्हाइट हाउस से सटे एक चेक पोस्ट पर हुई। संदिग्ध व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अमरीकी स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि देश में 157 गर्भवती महिलाओं में जीका वायरस का पता चला है। मंगलवार को लापता हुए इजिप्ट एयर के विमान की तलाश कर रहे दलों को भूमध्य सागर में विमान का मलबा और मानव अंग तैरते हुए मिले हैं। खोजी दल को विमान की सीटें और यात्रियों के सामान भी मिले हैं। ऐसे संकेत मिले हैं कि विमान में धुएं की जानकारी देने वाला अलार्म हादसे से ठीक पहले बंद हो गया। विमान में 66 लोग सवार थे और अब किसी के जीवित बचने की संभावना लगभग खत्म हो गई है। BBC समाचार।
तो नमस्कार, भारत की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली दीपक जसरोटिया ने। आपसे अगली मुलाकात होगी अभी से ठीक एक घंटे बाद कार्यक्रम विश्व भारती में, लेकिन आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट hindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।